ओम शांति। भगवान के चैतन्य बगीचे में वैरायटी पुष्पों की श्रृंखला में एक पुष्प अपनी खुशबू फैलाने के लिए हमारे बीच पधारी हैं। आदरणीय उर्मिला बहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आप बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक ज्ञान में तथा समाज के वैदिक और चारित्रिक पुनर्निर्माण में विशेष रुचि रखती हैं। 13 वर्ष की आयु में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। सहज राजयोग और सहज ज्ञान का अभ्यास करते हुए लौकिक पढ़ाई में मेरिट में आती रही और छात्रवृत्तियां भी प्राप्त करती रही। आप 1986 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हो गई। वर्तमान समय मुख्यालय के शांतिवन परिसर में ज्ञानामृत पत्रिका मासिक पत्रिका तथा त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के संपादन के साथ साथ राजयोग प्रशिक्षिका के रूप में सेवारत हैं। और आज का आपका टॉपिक है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे रहें। तो अभी हम सभी उर्मिला बहन जी से सभी सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको मेरे बाबा मीठे बाबा का पाठ पक्का कराया और अभी तो 18 जनवरी हम सबके सामने है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 18 जनवरी माना 18 अध्याय पूरे हो गए, तो 18 अध्याय गीता के पूरे हो गए माना हम सब कौन बन गए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन गए। बाबा ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का और हम सब बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जनवरी मास हमें बाबा की विशेष याद दिलाता है, उनके कर्तव्य गुण सब हमारे समक्ष बार बार आ जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है नष्टो मोहा बनने का, तो इसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है मुरली का, दे सही दे के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ। तो मोह की शुरुआत सबसे पहले देह से होती है और जब हम उसको खत्म करते हैं तो सबसे पहले छोड़ना भी हमको देह अभिमान है। और ये देह जन्म लेते ही सबसे पहले आत्मा को मिलती है, बाकी चीजें बाद में मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले शरीर मिलता है, उसके बाद शरीर के संबंध मिलते हैं, उसके बाद पदार्थ मिलते हैं और उसके बाद तो ये सारी दुनिया हमारे सामने होती है। तो ये जो शरीर है इसको कहते हैं प्रकृति कृत, और आत्मा है प्रकृति की मालिक। दो चीजें हैं, एक फिजिकल है और एक मेटाफिजिकल है। तो जो मेटाफिजिकल आत्मा है वो तो आई है, मेहमान है, और शरीर तो यहीं से मिला है। दोनों के गुण और धर्म बिल्कुल ओपोजिट है, लेकिन फिर भी दोनों ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक हो। जब आत्मा परम धाम से अपनी यात्रा शुरू करती है तो आत्मा के साथ क्या क्या होता है कुछ भी नहीं होता, केवल उसकी तीन सूक्ष्म शक्तियां होती है, एक मन, एक बुद्धि, एक संस्कार। ये उसके अनादि कालीन साथी हैं, जिनसे वो कभी अलग नहीं होती है। इन तीन साथियों को लेकर के आत्मा परम धाम से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। याद कर लीजिए उस अनादि काल को, जब हम परम धाम से उतर करके सतयुग में आए, हमारे पास हमारे परमानेंट तीन साथी थे। इन तीन साथियों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मन को अगर आप मंत्री कहें, बुद्धि को अगर आप राजगुरु कहें, और संस्कार तो इन दोनों के मेल से जो कर्म होते हैं हम उनको कहते हैं। तो मुख्य तो ये दो हैं, ये जो भी कर्म करेंगे वो संस्कार बन जाएगा, स्टोर में पड़ा रहेगा और फिर इनको मोटिवेट करता रहेगा उस प्रकार का कर्म करने के लिए। तो जब हम नीचे आए, आप एक सुंदर सी कहानी का दृश्य बना सकते हैं कि एक राजा अपने महल से निकला और उस राजा के साथ तीन उसके बहुत ही वफादार साथी थे। यात्रा करते करते राजा एक शहर में पहुंचा और उसने पड़ाव डाला। जैसे हम सब का भी पहला पड़ाव सतयुग था, तो जब कोई पड़ाव डालता है तो उसको लोकल सेवक भी चाहिए, स्थानीय सेवक भी चाहिए। पहले जमाने में कोई अग्नि लाके देता था, कोई लकड़ी इकट्ठी करता था, कोई उधर उधर से कोई और सामान लेके आता था, भोजन पकाने में मदद, स्वच्छता में मदद। तो आत्मा के तीन साथी तो परमानेंट, लेकिन इन तीनों से तो काम नहीं चलता। तो जब वो धरती पर पहला पड़ाव डालती है तो उसे कुछ लोकल सेवक चाहिए, और वो लोकल सेवक कौन से हैं? शरीर और शरीर की इंद्रियां, ये सब लोकल सेवक, आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, ये सब इस दुनिया से मिलते हैं। इनको अगर हम ये कहें कि राजा के जो तीन परमानेंट नौकर हैं उनके ये आगे चाकर, तो भी ये बात ठीक है। इन चाकरों का कनेक्शन उन तीन नौकरों से है, वो तीनों इन्हें चलाते हैं, उनका ये आदेश मानते हैं, और इस प्रकार से आत्मा का कर्म का सफर चालू होता है चाकरों के माध्यम से। जो लोकल नौकर होते हैं ना, उनसे फिर हम सारी दुनिया के साथ जुड़ते हैं, उनसे ही पूछते हैं भाई ये गांव कौन सा है, ये मोहल्ला कौन सा है, ये आदमी कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। तो इस दुनिया की चीजों की जानकारी आत्मा को इन लोकल नौकरों के माध्यम से मिलती है। और आपको पता है जब कोई मिलने आता है तो सबसे पहले कौन मिलता है? मान लीजिए आप किसी कंपनी के एमडी से मिलने जाए, तो एमडी आपको सामने थोड़े मिल जाएगा कंपनी के गेट पे। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो पहले आपको गेट पे गेट कीपर मिलेगा, उसको आप पूछेंगे भाई मैं अंदर जाऊं, फिर आप अंदर जाएंगे रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, वो आपको पूछेगा पानी पीना है, बैठ जाओ मैं बुला देता हूँ। आप कहेंगे नहीं बुलाओ मत, मैं खुद ही जाके मिलूंगा। तो आगे एमडी के ऑफिस के सामने एक व्यक्ति बैठा मिलेगा, वो आपको बताएगा कि वो अभी बिजी हैं, आप बैठो, बेल बजेगी, दरवाजा खुलेगा, फिर आप अंदर जाना। तो कितने गेट पार करने के बाद आप एमडी के पास पहुंचे। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो गेट पे सबसे पहले कौन मिलता है? उसके नौकर चाकर मिलते हैं ना। आंख मिलती है तो ये आत्मा की नौकर है, ये कहती है ठहरो मैं आपको देख के मैसेज पहुंचा देती हूँ कि अमुक आदमी कैसा है, कैसी उसकी शक्ल है, कैसे कपड़े हैं, आपको मिलना है कि नहीं मिलना है मैं पूछ लेती हूँ। तो आपको कौन मिला? जब आप किसी से भी मिले तो सीधा मालिक मिला? मालिक नहीं मिलता, नौकर मिलते हैं। आपकी आवाज सुन के एक नौकर आपकी आवाज अंदर भेजता है, आंख आपकी शक्ल देख के आपकी फोटो अंदर भेज देती है, नाक अपना काम करता है, और अंदर बैठे एमडी के पास ये सारी सूचनाएं पहुंच जाती है। एमडी कहाँ बैठा है? नौकरों से पार और पार बहुत अंदर बैठा है। फिर वो स्वीकृति देता है कि हाँ इस व्यक्ति को बिठाओ, मैं आता हूँ, मुझे इससे काम है, या फिर कह देता है इससे मेरा कोई काम नहीं है, आप इसे भगा दो, भेज दो, मना कर दो। तो फिर ये मुख काम करता है, कहता है जी साहब तो यहाँ है ही नहीं, साहब तो बहुत बिजी हैं, आज तो साहब के पास टाइम ही नहीं है। अंदर से जैसा मैसेज आया फिर ये कन्वे कर देता है। तो लोकल दुनिया के साथ जुड़ने के लिए लोकल नौकर चाहिए, और ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, हाथ भी उन्हीं में शामिल है। तो इस तरह से आत्मा अपना सफर शुरू करती है। अब जो दुनिया की पढ़ाई है उस पढ़ाई में सारा काम ही नौकर चाकरों का है, अर्थात लौकिक पढ़ाई आंखों के नीचे से शुरू होती है, और जो पारलौकिक पढ़ाई है वो आंखों के ऊपर से शुरू होती है। लौकिक पढ़ाई में आंख के ऊपर क्या है उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें शरीर के सारे अंगों के नाम है, उसमें सबसे ऊपर वाला अंग कौन सा है? आंख। उसके बाद फिर नीचे कान, इनके नाम अंग्रेजी में सुना हो, संस्कृत में सुना हो, लेकिन आंख के ऊपर भी तो एक रह गया, उसकी जानकारी मिस है। तो उसकी जानकारी हमें बाबा देते हैं, और ये सबसे ऊंची जानकारी है। तो आत्मा का सफर शुरू हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपने सच्चे साथी अविनाशी साथियों को भूल गई, और ये जो लोकल नौकर थे इनमें फंस गई, क्योंकि लौकिक पढ़ाई ने भी उसे याद नहीं कराया, घर में भी उसको किसी ने ये बातें याद नहीं कराई। देखो छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उस बच्चे को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उससे पूछो कि तुम्हारा मन कहाँ है, इसका पूरी पढ़ाई में, चाहे उसने एमए किया, बीए किया, एमएससी किया, पेची छूटती छूटती पूरी तरह से छूट जाती है। और आज जो समस्याएं हैं वो आंख नाक कान की कम, ज्यादा समस्याएं किसकी हैं? मन की है, और उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए मानसिक समस्याएं, अवसाद, तनाव, अनिद्रा ये सारी पैदा हो गई, क्योंकि मन को कोई जानता नहीं, मन की कोई संभाल नहीं करता, मन से कोई बात नहीं करता, मन की कोई चर्चा नहीं करता, तो लोग मन की समस्याओं से परेशान, और ऐसे करते करते सतयुग, फिर त्रेता बीता, फिर द्वापर, और कलयुग आते आते आत्मा पूरी तरह भ्रमित हो गई कि मैं तो ये बस आंख नाक कान मुंह, बस ये शरीर हूँ, बाकी मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि उसको उसका रूप किसी ने दिखाया ही नहीं। और धीरे धीरे जो दो चीजें थी वो मिलकर के एक हो गई। तो अभी देखिए हम शरीर के लिए कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, शरीर की सारी बातों को हम आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। तो ये एक गुत्थी उलझ गई, सूत पूरी तरह से उलझ गया। अब इस उलझे हुए सूत को बाबा सुलझाते हैं, लेकिन आपको पता है जब धागा उलझ जाए तो उसको आप जितना खींचेंगे वो और उलझता जाएगा। तो यहाँ भी लोगों ने इसको खूब खींचा, किसी ने आत्मा और शरीर के बारे में कुछ बताया, धागा खींचता गया उलझता गया। और अब तो हालत ये है कि ऐसी पद्धतियां आ गई अध्यात्म की और साधना की जो देह के अभिमान को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। तो मनुष्य पूरी तरह से मुंझा हुआ है। और ऐसे में देखो, बाबा ने हम बच्चों को बहुत सरल बात बताई कि ये शरीर पांच तत्वों का बना है। पांच तत्वों में से किसी भी तत्व में सोचने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, महसूस करने की शक्ति नहीं। तो कहते हैं जो ईंट में शक्ति नहीं वो दीवार में कहां से आएगी, जो माइक्रो में गुण नहीं वो मैक्रो में कहां से आएगा, जो व्यष्टि में नहीं है वो समष्टि में कहां से आएगा। तो जब शरीर की किसी भी कोशिका में न सोचने की शक्ति है, न बोलने की, न महसूस करने की, तो फिर शरीर में कहां से आएगी। तो ये सारे काम करने वाली तो चेतना है, आत्मा है, और वो दिखाई नहीं देती। तो व्यक्ति शरीर को मैं मानने लगा और शरीर को मैं मानते मानते शरीर में इतना मेरापन आ गया कि शरीर से मोह हो गया। बाबा कहते हैं देखो शरीर से कितना मोह है, खटिया पे पड़ी है, सारे अंग शिथिल है, फिर भी डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे बचा ले, क्योंकि शरीर से इतनी अटैचमेंट है। ये नहीं समझते कि पुराना कपड़ा है जाए तो अच्छा है, मुझे नया मिले, लेकिन नहीं, ये पुराने को ही पड़ा रहने दो जैसा भी है। ये देह के साथ अटैचमेंट की अति है। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया कि ये शरीर कपड़ा है, तत्वों का बना है, और आप इसके भीतर गुप्त रूप में विराजमान है। और गुप्त रूप में क्यों विराजमान है, क्योंकि जो अमूल्य चीज होती है वो बहुत गुप्त रखी जाती है। अभी हमने एमडी की बात सुनी, देखो किसी कंपनी का एमडी कितना अंदर बैठा होता है, बड़ा अमूल्य है ना। कोई वार करे बाहर से कुछ भी करे तो पहले गेट वाले सामना करेंगे, फिर और दूसरे, एमडी तक तो बहुत लास्ट में वार पहुंचेगा, तब तक वो अपना कोई प्रबंध कर लेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक बहुत अमूल्य अंगूठी है, सोने की, हीरे की, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे टेबल पे रखेंगे जैसे ये गिलास रखा हुआ है, खुला नहीं रखेंगे ना। आप सब कैसे रखते हैं अमूल्य जेवर को, पहले उस जेवर को जो सुनार होता है वो बहुत सुंदर डबिया में डालता है, डबिया भी बहुत बढ़िया मखमल लगी होती है, उसके बाद उस डब्बी को आप एक पर्स में डालेंगे और पर्स को भी आप खुला थोड़े छोड़ेंगे, अटैची में डालेंगे, और अटैची को आप यूं ही थोड़े रख देंगे, गोदरेज वाली अलमारी में डालेंगे, और गोदरेज की अलमारी को भी आप ऐसे बाहर थोड़े खड़ा करेंगे, कमरे के अंदर रखेंगे, और कमरा भी बिल्कुल अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, फिर उस कमरे को ताला लगाएंगे। तो किसी को अंगूठी तक पहुंचना है तो कितने लेयर पार करने पड़ेंगे, पहले वो कमरा खोले, फिर अलमारी खोले, फिर अटैची खोले, फिर पर्स खोले, फिर वो डब्बी खोले, और फिर जाकर के उसे अंगूठी मिलेगी। तो अमूल्य चीज है ना, बाकी सब चीजें हम सामने रख देते हैं, उसको सामने नहीं रख सकते, कोई भी उठा लेगा। तो अब आप देखो आत्मा तक पहुंचना है तो क्या क्या पार करना पड़ेगा, कितनी लेयर के अंदर है। पहले ये स्थूल इंद्रियां हैं, उसके बाद अंदर बहुत बड़ी लेयर है, हड्डी है, मांस है, जो भी है, उसके बाद फिर आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और उसके बाद जाकर के आपका आत्मा से साक्षात्कार होगा, आत्म अनुभूति होगी। तो मैं अभिमान से छूटना चाहता हूँ, इससे नष्टो मोह बनना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार ये अटेंशन देना पड़ेगा कि मैं बहुत अमूल्य हूँ और मैं बहुत अंदर गुप्त हूँ, लेकिन मेरा स्थान सबसे ऊंचा है। गुप्त तो हूँ लेकिन स्थान सबसे ऊंचा है, आंख से भी ऊपर। तो मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं आत्मा अपने सारे नौकरों से ऊपर बैठा हूँ, सारे नौकर मेरे नीचे हैं। देखो आप अपनी जगह, एक भी नौकर आपकी गद्दी से ऊपर नहीं है, सारे नौकर आपकी सीट से नीचे हैं। तो आप कौन हो गए? सारे नौकरों के मालिक हो गए, राजा हो गए। तो राजा कहाँ शोभा देता है? अपने सिंहासन पे शोभा देता है, और कर्मचारी उसकी बात भी कब मानते हैं? जब वो सिंहासन पे बैठ के ऑर्डर देता है। और राजा सबसे पहले ये सोचता है कि मैं अपने पुराने साथियों को अपनी तरफ रखूं। अगर मैंने पुरानों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये पुराने और नए मिलकर एक हो जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो अब तक हमने यही गलती की कि जो हमारे पुराने शुरू के साथी थे उनको अपना नहीं बना के रखा, तो परिणाम क्या निकला? वो पुराने वाले और जो बाद में नए मिले वो मिलके एक हो गए, और एक हो करके उन्होंने क्या किया? आत्मा को बंदी बनाया। तो अभी तक तो आत्मा बंदी थी, मन बुद्धि संस्कार की भी बंदी थी, और उसके बाद जो स्थूल इंद्रियां थी उनकी भी बंदी थी। एक समझदार राजा वो होता है जो कभी भी नौकरों को आपस में मिल करके चर्चा ना करने दे, सबको बिजी रखे और सबका कनेक्शन अपने से रखे। एक दूसरे से कनेक्शन हो गया तो उनकी यूनिटी हो जाएगी और राजा कमजोर हो जाएगा। तो ज्ञान मिलते ही हमने क्या किया? ज्ञान मिला तो सबसे पहले पुराने नौकरों पे कमांड की। पुराने नौकर कौन कौन से हैं? मन बुद्धि संस्कार। सबसे पहले उनके ऊपर कमांड लो, उनको अपने वश में करो, ये नए वाले तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मन को वश में किया, मन पर ध्यान रखा, बार बार मन से पूछा तुम्हारा क्या हाल है। एक राजा अपने मंत्री से 24 घंटे में एक बार भी बात नहीं करता, एक बार भी उसका हालचाल नहीं पूछता, तो मंत्री क्या सोचेगा? राजा को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो चलो मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। तो ये तो घूमने में ही लगा रहा, राजा ने पूछा ही नहीं। अब राजा इससे हर 2 मिनट के बाद पूछ लेता है, मंत्री जी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक है, अब ठीक हो, आपको कुछ चाहिए? तो ये मंत्री सोचता है कहीं मैं जाऊं और राजा आवाज लगाए और मैं सीट पे ना मिलूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरे को यहीं रहना चाहिए। तो जब से राजा ने मंत्री को पूछना चालू किया, इसने भागना छोड़ दिया, भटकना छोड़ दिया, तेरा मेरा, और ये क्या करता था? भाग करके इन इंद्रियों के पास आ जाता था। आंख को कहता था चल तुम ये देख ले, कान को कहता था तुम ये सुन ले, मुख को कहता था तू ये खा ले, इसे और कोई काम तो था नहीं। लेकिन जब से आत्मा ने इसको बिजी किया, अपने काम के साथ लगा लिया, तब तक इसको इन इंद्रियों को सिखाने का मौका ही नहीं मिलता। और इंद्रियां जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए तब तक कुछ नहीं करती, देख लेती हैं, पर देखे हुए का संस्कार नहीं बनता जब तक मन साथ में ना हो। सुन लेती हैं, सुने हुए का असर नहीं होता जब तक मन साथ में ना हो, खाए हुए का भी असर नहीं होता जब तक मन साथ में ना हो। और अब आत्मा ने क्या किया? मन को अपने साथ बांध लिया, घड़ी घड़ी उसका समाचार पूछती है। तो क्या हो गई आत्मा? आत्मा में ताकत आ गई, आत्मा शक्तिशाली हो गई, आत्मा समझदार हो गई और धीरे धीरे आत्मा मन की मनमानी से भी बच गई, इंद्रियों की गुलामी से भी बच गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब आत्मा अपनी स्मृति की सीट पर बैठी, ये सब मेरे नौकर हैं। और एक बात और होती है, जो परमानेंट सेवक होते हैं वो तो सदा रहेंगे, लेकिन जो लोकल सेवक होते हैं वो तो आप जब मर्जी बदल लो। एक शहर में गए तो आपको लोकल लोग और मिले, दूसरे शहर में गए तो दूसरे मिल गए, नया रसोईया मिल गया, नया स्वीपर मिल गया, नया पानी भरने वाला मिल गया। तो ये जो तीन है ये तो आत्मा के परमानेंट है, लेकिन जब भी आत्मा अपना पड़ाव बदलती है तो हर बार उसको नए लोकल सेवक मिल जाते हैं। सतयुग के पहले जन्म में जो आंख नाक कान मुंह थे, फिर अगला जन्म हुआ तो क्या हुआ? अगला पड़ाव डला तो मन बुद्धि संस्कार तो वही रहे, लेकिन जो स्थानीय सेवक थे वो सारे के सारे बदल गए। बदल जाते हैं तो उनको दोबारा थोड़ी बहुत बातें फिर सिखानी पड़ती हैं। तो बच्चा जन्म लेता है, नया शरीर लेता है, धीरे धीरे आंख नाक कान मुंह की ट्रेनिंग चालू होती है, खाना सीखता है, देखना सीखता है, बोलना सीखता है, थोड़े दिन में ये ट्रेंड हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे वो पुराने आदेश देते हैं, नए उनका आदेश फॉलो करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है? ये जो लोकल सेवक है ये तो स्थूल है, तो ये काम करते करते घिसते हैं, पुराने होते हैं, इन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। फिर बदले जाते हैं, फिर बदले जाते हैं। तो देखिए इनको तो 84 बार बदलती है आत्मा, लेकिन जो तीन है वो कभी बदले क्या? वो तो वही है। तो ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? जो परमानेंट है। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, जो परमानेंट नौकर होते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है, उनकी फैसिलिटी ज्यादा होती है, उनको छुट्टियां भी ज्यादा मिलती हैं। तो सबसे अधिक ध्यान उन तीनों पे होना चाहिए, क्योंकि वो आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन हमारा सबसे कम ध्यान किस पे होता है? व्यवहार में अगर हम देखें तो सबसे कम ध्यान किस पे होता है? उन्हीं पे होता है। दिन में दर्पण में आदमी कई बार देखता है, आंख कैसी है, बाल कैसे हैं, इनको कई बार संभालता है, संवारता है, लेकिन मन को भूल जाता है देखना, क्योंकि वो सूक्ष्म है। और इसको भूल जाता है तो उस भूल का फल बड़ा भारी निकलता है, क्योंकि ये मन अस्थिर हो जाता है, भाग जाता है, भटक जाता है, चंचल हो जाता है। तो नष्टो मोहा बनने का पहला कदम क्या है? राजा अपनी सीट पे बैठे और बार बार अपने को स्मृति दिलाए कि मैं राजा हूँ और ये सब मेरे नौकर हैं, और ये नौकर छूटते आए हैं, ऐसे ऐसे मैंने 83 बार नौकर लिए और अब ये 84 बार मिले हुए ये भी छूटेंगे, लेकिन मेरे जो परमानेंट साथी हैं वो मुझसे कभी नहीं छूटेंगे। बार बार हम अपने को ये याद कराएं, मैं अपने सिंहासन पे हूँ, कहीं मैं सिंहासन से नीचे तो नहीं उतर गया, मैं अपनी सीट पे हूँ। बार बार हम अपने आप को याद कराएं, बार बार अपनी चेकिंग करें, तो शरीर में मोह जाएगा ही नहीं। इतने छोड़े तो अब इनको छोड़ने में क्या मुश्किल है? और ये तो सबसे घटिया क्वालिटी वाले नौकर। पहले जन्म की जो आंखें थी वो कितनी सुंदर थी, पहले जन्म का जो चेहरा था या जो भी कुछ था वो तो बहुत सुंदर और स्वस्थ था, और ये आखिरी जन्म वाला ना सुंदर है, ना इतना स्वस्थ है, ना इतना दीर्घायु है। तो ये प्रैक्टिस आप बार बार करते ही हैं। ये हमारा पहला पाठ है। अपनी सीट पे बैठिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे को ऊंची सिंहासन पे बिठाते हैं और वो फिसल के नीचे आ जाता है। माँ बाप फिर उठा के ऊंचाई पे बिठाते हैं और फिर वो नीचे आ जाता है। तो जब नीचे आएगा तो क्या होगा? कंकर चुभेगी, मिट्टी लगेगी, गंदा हो जाएगा। ऊंची साफ सुथरी सीट पे बैठा रहे तो बच्चा साफ सुथरा रहेगा। तो बाबा ने कहा था, देखो बाबा आपको बार बार सिंहासन पे बिठाते हैं, भाई आप मेरे राजा बच्चे हो, तो राजा बच्चा सिंहासन पे शोभा देता है। लेकिन बाबा देखता है बच्चे फिर फिसल के नीचे आ जाते हैं, फिर बाबा उठा के सिंहासन पे बिठाते हैं, बच्चे फिर फिसल के नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग पे बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों पे। अगर बच्चे अपनी सीट पे सेट हो जाए तो बाबा की ये मेहनत भी खत्म हो जाए। तो ये नष्टो मोहा बनने का पहला कदम। अब दूसरा कदम क्या है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। तो सबसे पहले हमको देह मिली, उसके बाद देह मिलते ही देह के संबंधी मिल गए। हमने तो मांगे नहीं थे ना, लेकिन अपने आप पता नहीं कहां कहां से क्या क्या बन के हमारे सामने आ जाते हैं। कोई कहता है मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, कोई कहता है तुम्हारा ये लगता हूँ। तो कितने संबंधी मिले जन्म के साथ। लेकिन ये जितने भी संबंधी मिलते हैं ये असली हैं या नकली हैं? कैसे हैं ये तो नकली है, क्योंकि जो नकली चीज होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इनमें से किसकी गारंटी है भाई? काका, चाचा, मामा, किसी की गारंटी है? आपके पास किसी की गारंटी लिखी हुई आपकी जेब में पड़ी है कि आप चिंता मत करो, जब तक आप 70 साल के होंगे तब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक आप बुजुर्ग होंगे हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आप चिंता मत करो, ऐसा किसी ने आपको विश्वास दिलाया? तो विश्वास दिलाने वाला बाबा है और विश्वास तोड़ने वाले देह के संबंधी हैं। तो जो झूठे हैं, इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो जो सच्चे नहीं हैं, विश्वास तोड़ते हैं, साथ नहीं निभाते हैं, उनके साथ मोह कैसा? मोह तो बढ़िया चीज के साथ होता है ना, कि ये चीज बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, बहुत सुंदर है, इसलिए मेरा इसके साथ मोह है। उनमें तो कोई सुंदरता नहीं है, ना उनका प्रेम सच्चा है, ना उनकी वाणी सच्ची है, ना उनके कर्म श्रेष्ठ हैं, ना उनका अपने आप पर वश है, फिर भी हम उनसे अटैचमेंट रखते हैं झूठी नकली चीज से। अच्छा मान लो हमारे पास एक कंपनी की बनी चीज हो, ये कंपनी का बना, इसकी आहूजा कंपनी है, मान लो एक कंपनी का बना माइक है और एक लोकल है, कंपनी वाले के साथ गारंटी है 5 साल की और लोकल वाले की कोई गारंटी नहीं है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे? गारंटी वाले का। तो एक तरफ है सर्व संबंधी बाबा, वो कहता है मैं आपको सर्व संबंधों का सुख देने वाला हूँ, और दूसरी तरफ है ये बिना गारंटी वाले बहुत सारे। तो किसकी याद ज्यादा आनी चाहिए? बाबा की याद ज्यादा आनी चाहिए। तो अगर हमें सत्य से प्रेम है, ऐसे तो हम एक प्रार्थना गाते हैं, असतो मां सदगमय, तो इस इसका वास्तव में अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि इस झूठे शरीर से मुझे सच्ची आत्मा की ओर ले चलो, झूठे संबंधियों से मुझे सच्चे संबंधी परमात्मा की ओर ले चलो, और इस झूठ से बनी दुनिया से हटा करके मुझे सचखंड की ओर ले चलो। तो बाबा कहता है बच्ची मैं ले चलने तो आया हूँ, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो बाबा ने अपना काम कर दिया, वो सच की ओर ले चला, लेकिन अब हमको चलना है। दूसरी बात, ये जितने भी देह के संबंध, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जन्म के बाद संबंध ना मिले। सबको मिलते हैं ना, बिना मांगे मिलते हैं ना, लेकिन ये सारे के सारे संबंध कर्मजन्य है। कर्मजन्य का मतलब क्या है? आपने जैसे कर्म किए वैसे आपको मिल गए। आप बाजार में गए, एक ही दुकान के ऊपर चार लोग गए, एक की जेब में 1,00,000 रुपया था, दूसरे की जेब में 50,000, तीसरे की जेब में 25,000, चौथे की जेब में 1,000, चारों गलीचे की दुकान पे गए। दुकानदार ने पहले वाले से पूछा कितनी रेंज का दिखाऊं, बोला 1,00,000 के आसपास। दूसरे को पूछा 50 के आसपास, तीसरा बोला 10 के आसपास, चौथा बोला 1 के आसपास। चारों एक साथ गलीचे देख रही हैं। तो पहला वाला 1,00,000 वाला ले आया, आपका पड़ोसी था, और आपकी जेब में 1,000 था। आप एक चटाई ले आए पतली सी, गलीचा तो 1,000 में आता नहीं, लेकिन घर में आके आप कभी भी नहीं कहते कि इसको 1,00,000 वाला क्यों मिला और मुझे चटाई क्यों मिली, कहते हो कभी? आपको पता है जितना दाम वैसी चीज। तो दुनिया में चीज लेने के लिए दाम चाहिए, और भगवान से कोई भी चीज लेने के लिए काम चाहिए। काम माना कर्म। तो जब हम भगवान के पास गए कि हमको एक माँ दे दो, तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे माँ मांगने वाले। तो भगवान ने पूछा कितनी रेंज की दूं? अब जिसकी जेब में 1,00,000 श्रेष्ठ कर्म थे उसको वैसी माँ मिल गई, जिसकी जेब में 50,000 श्रेष्ठ कर्म थे उसको वैसी माँ मिल गई, जिसकी जेब में 25,000 श्रेष्ठ कर्म थे उसको वैसी माँ मिल गई, और जिसकी जेब में 1,000 श्रेष्ठ कर्म थे, और जिसकी जेब में एक भी श्रेष्ठ कर्म नहीं था वो खाली आज बिना माँ के ही आ गया। लेकिन यहाँ हम भूल जाते हैं कि ये कर्मजन्य चीजें। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, भगवान तूने उसको इतनी अच्छी माँ दी और मेरी माँ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, और मेरे को माँ दी क्यों नहीं, आपने सबको माँ दी मुझे क्यों नहीं दी? भाई तेरा एक भी पुण्य कर्म था ही नहीं, जन्मते ही तेरी माँ तेरे को छोड़ के चली गई, तू खाली जेब लेके गया दुकान पे। तो ये जितने भी रिश्ते हैं सारे के सारे कर्मजन्य हैं। जैसा कर्म वैसा रिश्ता। किसी को मिला ही नहीं, किसी को खोटा मिला, किसी को दुखदाई मिला, और अब हम कहते हैं भगवान ये तूने क्या दिया? भगवान कहता है तेरे जैसे दाम थे वैसी चीज मिल गई। अभी भी भगवान कहता है तेरे को पसंद नहीं है तो तू ऐसा कर, अभी से कमाई चालू कर, और अभी से कर्मों रूपी दाम जमा कर, मैं ये बदल दूंगा, थोड़े और पैसे दे जा तो मैं नई और बढ़िया इसी जन्म में। तो हम देखते हैं कि जब कोई ज्ञान योग का अभ्यास करना चालू कर देता है, अपने कर्म श्रेष्ठ बनाना चालू कर देता है, तो जो संबंधी बिगड़े हुए थे वो सारे के सारे सुधर जाते। जैसे ही आपने दाम जमा किए, चीज में सुधार आ गया। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे कर्म कर कि सतयुग में श्री कृष्ण जैसे, श्री राधा जैसे परिवार के मेंबर मिले, श्री लक्ष्मी जैसे, श्री नारायण जैसे मिले। तो हमारी पुण्य से जेब इतनी भर गई कि जब हम गए तो हमको टॉप क्वालिटी वाले सारे संबंधी मिल गए। टॉप क्वालिटी की माता, टॉप क्वालिटी का पिता, टॉप क्वालिटी के भाई बहन, जो भी, क्योंकि जेब पुण्यों से भरी हुई थी। दुख तो ये संगम युग कर्म जन्य संबंधों को खत्म करके धर्म जन्य संबंध बनाने का युग है। सतयुग के जो संबंध है वो धर्म जन्य, हर संबंध के बीच में धर्म है। धर्म अर्थात धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। एक और दूसरे संबंध के बीच में सद्गुण होंगे, तो अब क्या करना है, इन कर्म जन्य संबंधों से ममत्व नहीं रखना है। इनमें से कोई मेरा नहीं है, इसलिए बाबा ने पाठ पक्का कराया। मेरा अगर कहना है तो केवल एक को कह सकते हो, बस एक जगह मेरा कहने की छूट है, बाकी सारे लाइसेंस रद्द, कोई लाइसेंस मान्य नहीं है। केवल एक जगह आपका लाइसेंस काम करता है, उसे आप दिन में हजार बार करोड़ बार मेरा मेरा कहो, कोई पेनल्टी नहीं है। वो कौन है? मेरा बाबा। बस ये वाला चालू है, बाकी सारे कैंसल है। कोई शरीर का संबंधी मेरा नहीं, कोई दे दे के पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं। ये सब प्रकृति कृत है और ये शरीर प्रकृति को वापस लौटाने हैं। और तीसरी चीज, किससे नष्टो मोहा बनना है? देह देह के संबंध और देह के पदार्थ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे सारे दिन की दिनचर्या में व्यक्ति के प्रति रखो आत्मिक भाव और पदार्थों के प्रति रखो अनासक्त भाव। और बाबा ने एक सावधानी और दी थी। बाबा ने कहा, जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई तो इस यज्ञ में बहुत अभाव थे चीजों के, पदार्थों के, बेगरी पार्ट भी आया। लेकिन बाबा ने कहा, जैसे जैसे आप बच्चों की तपस्या बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रकृति आपकी दासी बन रही है। लेकिन बाबा ने कहा, ये संगम युग साधना का युग है, तपस्या का युग है, सादगी का युग है, सत्यता का युग है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी साधना के फल स्वरूप अगर प्रकृति आपकी दासी बनती है तो उसे स्वीकार मत करना। प्रकृति को दासी के रूप में हम सतयुग में स्वीकार करेंगे, संगम युग में हमें कोई दास दासी नहीं चाहिए। तो अगर वो दासी बनती है, बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन आप उसको कहना कि अभी हमें तपस्या करनी है, सेवा करनी है, दास दासी सतयुग में चाहिए, तब हम आपको स्वीकार करेंगे। अभी तो हम खुद ही सेवक, तो सेवक अगर अपने आगे और सेवक रख ले तो सेवा कैसे करेगा? तो अभी हमारा टाइटल क्या है? खुदाई खिदमतगार, विश्व सेवाधारी, ये हमारे टाइटल है। इसलिए हम सेवाधारी ही अच्छे हैं। तो किसी भी साधन के वशीभूत होके मेरी साधना कम ना हो जाए, नहीं तो मुझे बहुत घाटा लग जाएगा। यहाँ पे कोई सेवा मिलेगी थोड़े दिन की, लेकिन उसके बदले 21 जन्म का घाटा लगेगा। मिलेगी थोड़ी और जाएगा बहुत ज्यादा, तो मैं थोड़ी सी प्राप्ति के लिए 21 जन्म का घाटा नहीं डालूं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे त्याग का भी त्याग, मैंने त्याग किया और उसके फलस्वरूप मुझे कोई प्राप्ति हुई तो ये मेरा केवल त्याग है, लेकिन मैंने त्याग किया उसके फलस्वरूप मुझे कोई प्राप्ति हुई और मैंने उस प्राप्ति का भी त्याग कर दिया, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो इसको कहेंगे त्याग का भी त्याग। मैंने कोई सेवा की और उसके बदले मेरी कोई महिमा हुई, मान शान मिला, लेकिन मुझे वो भी नहीं चाहिए। जैसे समझदार किसान कौन होता है, उसने फसल बोई, बहुत बढ़िया दाने निकले, अब वो सोचता है इन दानों को मैं फिर बो दूं ताकि अगली बार और कई गुना फसल हो, और फिर बहुत सारे दाने आए, फिर सोचता है इनको मैं और बड़े खेत में बो दूं ताकि और ज्यादा दाने मिले। तो अगर वो इस तरह से बोता जाता है बड़ी बड़ी जमीन पे, तो देखो उसकी आमदनी कितनी बढ़ जाती है। लेकिन एक बार बोया, दाने आए, कुछ खाया या कुछ और किया, अगली बार बोने के लिए बचे ही नहीं, तो उसको हम समझदार थोड़े कहेंगे। बस एक बार की प्राप्ति को देख के ये फूल गया, अब आगे कहां से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे संगम युग बोने का युग है और सतयुग खाने का युग है। संगम युग में जब बोओगे तो खाने को तो मिलेगा ही, ये बोने का युग भी है, प्राप्ति का युग भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्राप्तियों को स्वीकार करके और आप आगे के भाग्य से वंचित हो जाओ। इसलिए कितना भी मिले अच्छी बात है, लेकिन उस मिले हुए को बाबा की अमानत समझ के फिर सेवा में लगा देना, फिर सेवा में लगा देना, ताकि भाग्य बढ़ता रहे और ये भाग्य फिर चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ता है। ब्याज पे भी ब्याज लगता है, मूल पे तो ब्याज लगता ही है। तो क्या होगा, हम सब बच्चे पद्मा पदम पति बन जाएंगे। संगम युग में हमारी कमाई कितना गुना हो जाएगी। थोड़े दिन पहले एक समाचार आया था कि इस देश का एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी एक घंटे की कमाई 1,00,000 रुपया है। उसकी तो एक घंटे की कमाई 1,00,000 रुपया है, लेकिन मान लीजिए वो आज शरीर छोड़ दे तो उसके साथ कितनी कमाई जाएगी, वो तो सारी यही रहेगी, क्योंकि प्रकृति की जो भी चीजें हैं उनकी मालिक प्रकृति है, और प्रकृति इस साकार लोक में है तो प्रकृति की कोई चीज कोई ले जा नहीं सकता। अच्छा, वो 1,00,001 घंटे में कमाता है तो क्या 1,00,001 घंटे में यूज कर सकता है, खा सकता है, पहन सकता है? और अगर खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, तो वो यहीं पड़ी रहेगी, वो तो डेफिनेट है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों की कमाई कितनी बताई, 1 घंटे में नहीं, 1 कदम में पद्मों की कमाई। घंटा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन 1 कदम में पद्मों की कमाई। पद्म में कितना लाख होता है, गिनती नहीं आती है हमको, तो पता नहीं पद्म में कितना लाख, कितना करोड़, कितना अरब, कितना खरब होता है। इतनी कमाई बाबा के हर बच्चे की हर श्वास में है, हर संकल्प में। इसलिए बाबा कहते हैं, आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आपसे अधिक अमीर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। लेकिन कब, जब हम साधनों में आसक्त ना हो। बाबा ने कहा था बच्ची आसक्ति शक्ति को खत्म कर देती है, अनासक्त आत्मा शक्तिशाली होती है। तो ना देह में आसक्ति, ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम देखते हैं बाबा को तीनों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। जब बाबा से बच्चे मिलते थे तो बाबा का शरीरी रूप बच्चों को चुंबक की तरह खींचता था, निरंतर अभ्यास था बाबा का आत्मिक स्वरूप का। बाबा के मस्तक में आत्मा अखंड ज्योति जगमगाती दिखाई देती थी, कईयों को अनुभव होता था। और देह के संबंधों में भी बाबा का कोई आकर्षण नहीं था, कोई देह का संबंधी बाबा के आसपास हो या बाबा के किसी कार्य में उसका कोई इंटरफेयर हो नहीं, और ना ही बाबा का पदार्थों में कोई मोह था। अगर किसी ने बाबा को कोई चीज दी तो बाबा तुरंत बच्चों की सेवा में लगा देते थे। अब बाबा ने अपना तो लगाया ही, लेकिन बाद में भी बच्चे बाबा के लिए बहुत चीजें लेके आते थे, लेकिन बाबा ने अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना कोई कीमती पहनने का, ना कुछ बहुत खाने का, ना रहने का। बाबा लास्ट तक बहुत सिंपल रहे और जो भी कुछ आया वो सब बच्चों के लिए समर्पित किया। तो ये जनवरी मास, साल का पहला मास, हम बच्चों को बाबा के जीवन से सीखने की, बाबा जैसा बनने की प्रेरणा देता है। तो हम बाबा के कदम पर कदम रखें और इस अव्यक्त मास में अपनी स्थिति अव्यक्त बना करके अपने पिछले विकर्मों को दग्ध करें और आगे के लिए पुण्य का खाता जमा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।
पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी।